أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چلیے شروع کرتی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ کیسے اللہ کے نبی بھی مجھے تو لگتا ہے کہ درختوں سے بہت پیار کرتے تھے. قرآن کھول لے, قرآن میں اللہ کا تعلم طرح کئی فضرب اللہ مثلا کلیمت طیبت, کیا تم نے نہیں دیکھا, مراد کہہ کے دیکھو غور کرو کہ کیسے اللہ نے بیان کی ہے ایک مثال ایک پاکیزہ کلمے کی, کشجرت جو ایک درخت کی طرح. تو وہ قرآن کی آیت سورۃ ابراہیم ہے. اللہ کے نبی نے بھی ایمان کو ایک درخت سے تعبیر کیا ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے اس شارٹ سے کورس کی, جس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی شاخیں کیا ہیں. تو ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے, برانچز آف ایمان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ایمان کی شاخیں یعنی برانچز آف ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایمان کی شاخوں کی بات کی, اور وہ حدیث ایک جگہ نہیں کئی جگہ مختلف انداز سے ہمیں ملتی ہے, جس کی روشنی میں بہت ہی کلیئر کٹ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمان ایک منجمد اور سائلنٹ چیز نہیں ہے, یا بے جان پھولوں کا, یا مصنوعی پھولوں کا, یا آرٹیفیشل فلاورز کا کوئی بکے نہیں ہے. آپ کے سامنے ٹیبل پر فریش فلاور کوئی رکھ دے اور اسی کے دوسری طرف پہلے سے موجود کوئی آرٹیفیشل فلاورز تھے جو پچھلے ایک ہفتے سے آپ دیکھ رہے تھے, دو چار دن گزریں گے تو وہ جو آرٹیفیشل تھے وہ ویسے ہی رہیں گے, لیکن جو اصلی پھول ہوں گے نا وہ تبدیل ہوں گے. اگر کسی نے آپ کو بالکل ان کھلے پھول دیے, کچے تھے تو کھلنے لگیں گے, اور اگر نیچے آپ نے پانی بھی ڈالا ہوا ہے جو اس کی بنیادی چیزیں دیتے رہے, اور اگر اس پودے کو بلکہ فریش پاٹ میں ہو, یعنی ناروے میں لوگ یہ پھولوں کا گلدستہ نہیں دیتے, وہ پاٹس میں دے دیتے ہیں کہ کچھ دن تو رکھو گھر میں, پھر وہ اگتا بھی ہے. کبھی کا وہاں کا کلچر ہے کہ جو فلاور شاپس ہوتی ہیں نا, تو اس میں مٹی مٹ پورا اس کے سمیت فلاور ہوتا ہے, ایک اور فلاور کہہ لیں یا پورا پلانٹ ہوتا ہے, تو وہ جا کے آپ گھر میں رکھیں تو وہ کئی دفعہ تو پھر دو دو سال چار چار سال چلتا ہے. تو ایمان جو ہے یہ منجمد نہیں ہے. اب وہ پھول جو خراب نہیں ہوئے اس میں خوشبو نہیں آتی. کل میں نے کسی کو ایک گفٹ دیا, وہ آرٹیفیشل فلاورز تھے, دیکھنے میں ریئل لگتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک بوٹل تھی عطر کی. تو وہ عطر ڈالتے رہے تو کچھ دن خوش ہوتے رہے, جس دن عطر ختم ہو جائے گا پھر وہ ڈھونڈتی پھریں گی اب اس کا ریفل کہاں سے ہے. لوگ کوشش تو پوری کرتے ہیں نا نقلی کو اصلی میں بدلنے کی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے پودے کے اندر سے خوشبو آتی ہے. جو اصلی پودے اصلی پھل اصلی پھول ہوتے ہیں نا, وہ خود اٹ سیلف اللہ کی مدد سے اللہ اندر سے اس کے نکالتا ہے. آپ اپنے ذہن لکھیے ذرا اس وقت اس ٹاپک کو جذب کیجئے پہلے, یعنی کسی بھی اصلی پھولوں کے پودے کو باہر سے زیادہ اندر سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک لکھیے, نیچے دبا لگے یعنی زمین میں لگا ہو وہ پودا, درخت کو ذہن میں لے آئیے. دوسری بات یہ ہے کہ پانی بھی اس کو ملے, ہوا بھی ملے, روشنی بھی ملے, پھر اس کی ٹیک کیئر بھی ہو, پھر اس کا موسم بھی ٹھیک ہو, پھر زمین کے جس ٹکڑے پہ وہ بیج ڈالا گیا تھا وہ کہہ لیجئے کہ وہ زمین بھی اس کے لیے مؤثر ہو. ٹھیک ہے, اس کے برعکس نقلی آرٹیفیشل فیک ریپلیکا کوئی بھی نام جو آپ کو اپنے دماغ کے قریب لگتا ہے وہ ذہن میں لے آئیے, دونوں کا فرق یہی ہے. جو نقلی پھول ہوتے ہیں نا ان کو باہر کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کوئی مٹیریل ڈالے گا, کوئی پلاسٹک کے یا کاغذ کے پھول ہوں گے. وہ ایک پروین شاکر ماضی کی ایک بہت بڑی اچھی شاعرہ تھی, تو وہ کہتی تھی کہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی, کاغذی ایمان سے خوشبو نہیں آتی. آج تقریباً 2 بلین لوگوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں لفظ مسلم یا مومن یا بلیور جو بھی کہہ لیجئے لکھا ہوا ہے, لیکن وہ خوشبو نہیں آ رہی. وہ دنیا کی کیاری, آپ پوری اس دنیا کو ایک باغ سے تصور میں لائیے, اس میں سے مہک نہیں آ رہی. दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है इस वक्त जितनी आज से कह लीजिए कि कई साल पीछे थी, जब जिंदगी बड़ी आसान थी, न मशीनें थी न फोन थे, दुनिया की तरक्कियां नहीं थी, लेकिन दुनिया खूबसूरत थी। लोग पहाड़ों की वादियों में रहते, ऊंटों और खच्चरों पे चलते, इतनी मेंटेनेंस थोड़ी होती है ऊंट की या घोड़े की जितनी आज आपकी गाड़ियों की। आपको घोड़े और ऊंट के ऊपर बैठने के लिए कोई इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ती है, कोई उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है हर वक्त, फिर वो पेट्रोल की महंगाई और कमी और बेशी का कोई शिकार तो नहीं होता ना। बिल्कुल इसी तरह से जितना इंसान बैकवर्ड जाता है, जितना इंसान पीछे जाता है, देखा जाता है कि इंसानों के पास गैजेट कम थे लेकिन इंसानों के पास खुशी ज्यादा थी, पीस था, इत्मीनान था। और आज भी ये चीज आपको दिखेगी कब, जहां आप फितरत के करीबी माहौल में रहेंगे, देहातों में, जंगलों में। अपने इसी ट्रिप में, जिसके बिल्कुल ही अल्लाह की रहमत से हम एंड पे खड़े हैं अब इस वक्त, तो आयरलैंड का एक अंदर का टाउन था कोई, अब नाम मुझे सही नहीं आते, ट्रेली कहते हैं इसी तरह कुछ और भी नाम थे, तो वहां गए हम इस दफा। पहली दफा दोस्त नए शहर हमने देखे आयरलैंड के, पहले तो हमेशा अब डबलिन और कॉर्क को देखा हुआ था। तो जो चीज वहां जाकर रहकर फील हुई कि फितरत के करीब, अलामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा था कि फितरत के मकासिद की करता है तर्जुमानी, या बंदाए कोहस्तानी या फिर रेगिस्तानी, यानी पहाड़ों में रहने वाले और कह लिए कि उनमें रहने वाले, जिसको आप कह सकते हैं सहराओं में रहने वाले, वही अल्लाह ताला के मकासिद, और अल्लाह का मकसद सबको आ जाना चाहिए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा बीइंग मुस्लिम और वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, क्योंकि जब तक जाती इस्लाह नहीं होगी, पर्सनल ग्रूमिंग नहीं होगी, तब तक दूसरी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से आज दुनिया में शोरोगुल बहुत है लेकिन खुशहाली कम है, इज इट ट्रू? पैसा बहुत है, सेलिब्रेशन नहीं है, और कुछ इस किस्म की चीजें भी आपको अपनी जिंदगी में दिखेंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी जिंदगी में चीजों को हासिल कर लेने के पीछे मशीन बन गए, रोबोटिक लाइफ है। बच्चे और माँ बाप और बीवी और शोहर एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते, हफ्ते में एक दिन वीकेंड रखा होगा जिसके ऊपर अगर कोई एक दूसरे को देख लें तो बड़ी खुशी की बात है। यानी अब जितना वर्ल्डली दुनिया में खोते जाएंगे, यानी छोटे शहर से बड़े और बड़े शहर से बड़े मुल्क और बड़े मुल्क से पता नहीं फिर चांद पे हम चले जाएंगे, उतनी जिंदगी की वो असल खूबसूरती और मिठास कम होती जा रही है। आज भी वो मजदूर जो 200-400 रुपए की दिहाड़ी करके रात को आएगा और उसकी बीवी ने आज दाल बनाई तो कल साग बनाया तो परसों चार, वो कोई हफ्ते में एक दिन अगर मुर्गी पका लेंगे, और वो मुर्गी पूरी थोड़ी पकाते हैं, उसके सिरे सुरे ले आते हैं, ये पंजे पका लेते हैं, आज गर्दने ले आए, कल वो कहते हैं कलेजे, हमारी मुर्गियां खत्म नहीं होती। वो गरीबों को जब पूरी बोटी मिले तो वो दिन शायद उनके बच्चों की ईद का दिन हो, लेकिन वो ज्यादा खुश होंगे। जितने झंझट पाल लेंगे, जितनी आपकी जिंदगी में चीजें बढ़ती जाएंगी ना, उतना आप परेशान रहेंगे, ये तो पक्की बात है। आज भी इस दुनिया में सिर्फ वही मर्द, वो बाप है, बेटा है, भाई है, यानी कवामियत के दर्जे पे जो है, वही खुश है जिसने अपना एक सर्कल बना के बीवी और माँ और बहन को कह दिया कि बस इसके अंदर गुजारा करेंगी आप, जरूरियात पूरी हो रही हैं, बच्चों की फीसें हैं, ये घर का किराया है, ये बिजली का बिल है, और इसके बाद जो भी है बस इसमें रही, वो कंटेंट है। और अगर आज खूब से खूब तर की तलाश में आप अपने आप को आगे से आगे लेकर जाना चाहें, तो ये आप खुद अपने आप को हलाकत के घड़े में डालते हैं, फिर इसका कोई एंड नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और ये जो बात है ना कि जब हमारी नीड्स पूरी होती हैं तो हम वॉन्ट्स पे आ जाते हैं, और वॉन्ट्स की कोई हद नहीं है, कुरान इसको हवा कहता है। नीड्स पूरी हो जाती हैं, वॉन्ट्स नहीं पूरी हो रही, इसके लिए कर्जे भी हैं, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हालात में डालकर घरों में जंगे, लड़ाइयाँ और परेशानियां भी हैं। ऐसे वक्त में खुशी की तलाश में, इत्मीनान भरी जिंदगी की तलाश में हम ब्रांचेस ऑफ ईमान का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ईमान की शाखें। कुरान पाक में इंसान की जिस दौलत को सबसे बड़ी दौलत कहा गया, वो माल नहीं, वो औलाद नहीं, वो घर नहीं, गो के ये सब कुछ नेमते हैं, जुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरा। आपको याद आ जानी चाहिए सूरत आल इमरान की आयत 13 है, जुय्यिना लिन्नास। अल्लाह ने एक खूबसूरत सी लिस्ट दे दी है कि जिसको गिनने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आप इसको सीधा कर ले, ये जिंदगी की माल है, जालिका मताउल हयात दुनिया। लेकिन कुल औनबियुकुम बिखैर मिन जालिकुम कह कर फिर आगे जन्नत की रग़बत दिलाई गई। मैंने जितनी भी बार कुरान पढ़ा या पढ़ाया, सारी बातों को अगर मैं सम अप कर दूँ ना, मुझे तो एक ही बात समझ आई कि जिस चीज़ पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज, जिसकी सबसे ज्यादा रग़बत, जिसके लिए नबुव्वत का तार ना टूटा एक वक्त तक, और फमन तबीये खुदा या की बात जो अल्लाह ने आदम के दुनिया में आते हुए की थी वो आज तक ना टूटा और क्यामत तक नहीं टूटेगा। आपने फरमाया कि एक गिरोह हमेशा हिदायत पे रहेगा और हिदायत की तरफ बुलाता रहेगा, वो दौलत ईमान की दौलत है। ईमान दुनिया की कीमती तरीन मता है। कुरान पाक की चंद आयतों के नंबर नोट कर लीजिए जहां आपको ईमान की बातें मिलती है। सूरत बकरा को अगर हम देखें तो पहली 3 आयतें, यानी जब आयत नंबर 3 पे आप आते हैं, अल्लज़ीन युमिनून बिलगैबी व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और वो कायम करते हैं नमाज और उसमें से जो के रिस्क हमने उनको दिया वो खर्च करते हैं। आयत नंबर 3 लिख लीजिए। आगे चलिए आयत नंबर 4, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। क्या है वल्लज़ीना युमिनून? अमन। आयत नंबर 4 इससे मुतल्लिक है। थोड़ा सा और आगे आइए तो क्या होगा, सूरत बकरा ही की आयत 25, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। और खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान भी लाए और उन्होंने अमल भी सालेह किए। यहाँ फिर ईमान की बातें आ गई। अच्छा जी, अब क्या यही बातें हैं? नहीं, थोड़ा सा आगे जाइए आयत 41 सूरत अल बकरा की, वामिनू बिमा अनजल तुम मुसद्दिक लिमा माकुम, और ईमान ले आओ उस पर जो कि तुम्हारी ही बातों की तस्दीक करता है। यानी मदीना में रहने वाले यहूद को दावत ईमान है कि वो पिछला ईमान तुम्हारा उसी वक्त ही कारामद होगा जब तुम इस नबी पर और इस शरीयत पर ईमान लाओगे। यानी वो जिनको मान था अपने जन्नती होने पे और वो जिनको मान था नहनो अबनाउल्लाह और अहिब्बाउहू का, कि हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे और अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह उनको कतई मान लो। ये ऐसे है जैसे कोई भड़े मार रहा हो कि मैंने मास्टर किया, वो कहता है चलो मैट्रिक में जाके दाखिला लो, तुम्हारा ईमान कुछ नहीं है, अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। यानी वो लोग जो खुद पसंद थे, जो अपने आप को हरफन मौला समझते थे, अल्लाह कहता है तुम्हें अब नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। और आज ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जिंदगियों में आपको ये रंग दिखेगा कि वो अभी खुद उस दर्जे पे नहीं होते जिस पे लोग उनको उससे कई आला दर्जे के ऊपर बुलंदियों पे सोचते हैं। अब जब आप सूरत अल बकरा आप खोलते हैं और आपको लफ्ज ईमान इतनी दफा दिखता है, बताऊं आपको पूरे कुरान में ये लफ्ज कितनी बार है? 879 टाइम्स। आप कोई और लफ्ज डालकर देख लीजिए इतनी दफा नहीं है। 723 वर्सेस आयते, 723 आयतों में 879 टाइम्स लफ्ज ईमान किसी ना किसी रंग में आया है। वो युमिनूना बिलगैब है, अगर वो युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक है, ला युमिनून है, या यकूलू आमन्ना बिल्ला है, वमा हुम बिमोमिनीन सूरह बकरा की आयत 8 में है, फिर आयत नंबर 9 में है, युहादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, यानी ये मुनाफिकीन की बातों में है लेकिन तस्करा इसका इसमें मौजूद है, और इसी तरह से सूरह बकरा की आयत 13 में 4 दफा ये लफ्ज है। वैज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना अन्नास क़ालू अनूमिनू कमा आमना सुफहा। 4 दफा सूरह बकरा की इस आयत में ये लफ्ज़ आया है। और आगे चले जाएं तो 14 आयत आमनू और आमन्ना 2 दफा ये लफ्ज़ आया है। आप थोड़ा सा आगे चलिए, आयत 25 सूरत अल बकरा, वबशिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं आयत 26, सिर्फ अगला ही मरहला, फ़म्मल्लज़ीना आमनू फ़यालमून अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम। अभी ये भी नहीं हज़म हुई तो आयत 41 आ गई, वामिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माकुम, यानी ईमान ईमान ईमान। अगर ये कोई 4 दिन का कोर्स होता तो मैं आपको ये सारी आयतें लिखा देती। कुरान आपको जिस चीज़ की दावत देता है वो ईमान है। ये जो कुरान नाजिल हुआ ना, जो आप कहते हैं आई वी लव कुरान, ये ईमान के लिए बुला रहा है। अंबिया कराम जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, ईमान की दावत देते थे। कहाँ पढ़ते हैं? सुबह तहज्जुद के वक्त, सुबह उठते ही जो आपको पहला सबक दिया जाता है ना, सूरत आले इमरान का जो फर्स्ट पोर्शन आप पढ़ते हैं तहज्जुद में, इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैल, ईमान की बातें हैं। क्या कहा उसमें? युनादी इलल ईमान अन आमिनु बिल्ला अन आमिनु बिल्ला। और सिर्फ मैं आपको सूरह बकरा के सारे दिखाऊं ना तो भी आपको यकीन आ जाएगा कि ईमान दुनिया की सबसे कीमती दौलत। सूरह बकरा आयत 55 खोल लीजिए, व इस कुल तुम या मुसा लन नोमिना, हम नहीं मान लाएंगे तुझ पर, ठीक है ना से। और सूरह बकरा की आयत 62 खोल लीजिए ना, तो उसमें तो ईमान को शर्त बना दिया कि नल्लजीना आमनु वल्लजीना हादु वन्नसार वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। थोड़ा सा आगे जाइए तो आयत 75, अफततमऊना यूमिनू लकुम, अल्लाह अपने नबी को कहते हैं आप इस खुशफहमी में आप ये उम्मीद रखते हैं, आपने इनसे ये उम्मीद लगाई है कि ईमान ले आए। वक़द कान फरीक़ मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह, ये तो वो सख्त लोग हैं कि इनका एक पूरा फिरका एक पूरा गिरोह कुरान सुनता था, अल्लाह का कलाम सुनता था। लेकिन आपका क्या ख्याल है सारे सुनने वाले ईमान ले आते हैं? ना ना ना, वो तो सुनकर बल्कि लिखना शुरू हो जाते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहू, वो तो इसमें तहरीफ करते थे, यहूद के उलमा की बातें इसमें करती। मिम्बादी मा कलू, अकल भी आ गई थी, समझ भी गए थे, वहुम या लमून, इल्म भी आ गया था, लेकिन ईमान नहीं आया। तो लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इल्म आने के बाद ईमान भी आ जाए। खोखला कुछ लोगों का ईमान बंजर बांझ ईमान। असल ईमान बांझ नहीं होता, बंजर नहीं होता। आप देखिए, फितरत का असूल है नस्ल औलाद से चलती है, और इल्मी नस्ल शागिर्दों से चलती है। जिनकी अपनी औलाद नहीं हो, जैसे खास तौर पे नबी सल्लम को एक ताना दिया था आपके किसी रिश्तेदार ने कि मोहम्मद तू तो नस्ल बरीदा है, आपकी तो नस्ल ही नहीं चलनी, तो अल्लाह ने क्या कह दिया? इन्ना शानिया का हुवल अबतर, तेरा दुश्मन ही अबतर है, उसी की नस्ल कटी। अबतर बतर से होता है, यानी जिसकी नस्ल ही कट चुकी है। और आज भी देखिए दुनिया में नबी सल्लम के फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या पता चला कि वो रूहानी नस्ल ज्यादा अहम होती है नस्बी नस्ल से। लिख लीजिए, एक होती है नस्बी नस्ल जिसका गम बड़ा होता है, बच्चे बच्चों के बच्चे पोते नवासे, हाँ इनका क्या करें, इनके घर इनकी बाड़ियां ये है वो है दिस एंड दैट, इस तरह की बातें। एक होती है रूहानी नस्ल, खुद से सवाल कीजिए क्या मेरी नस्बी नस्ल यानी बच्चे और पोते वो वाकई मेरी रूहानी नस्ल भी हैं? ये है आइडियल सिचुएशन, जो अपने बच्चों को इल्म और अमल में आगे से आगे पुख्ता करना चाहते हैं करते रहते हैं, उनके लिए वो बच्चे रूहानी नस्ल बनते हैं। फिर वो अलग नहीं होता कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे भी होते हैं वो स्टूडेंट्स भी होते हैं, ये मेरे दीनी बहन भाई हैं और ये फलां हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिए, तभी तो हजरत मूसा ने कहा था वजल्ली वजीर मिन अहली, बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्या आपके खानदान, जिसमें ऑफकोर्स औलाद बीवी बच्चे घर इर्द गिर्द सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हों? एक ही हों। अंबिया कराम को गम क्या था? वैज हजरा याकूब अल मौत, याद है आपको वक्त जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत करीब हुई थी, यानी निजा की हालत थी, या बेड पे थे, क्या कहा था उन्होंने अपने बच्चों से? इमेजिनेशन में मेरे आ गया, एक बूढ़ा सा शख्स लेटा हुआ है और बिल्कुल जिंदगी की आखिरी तस्वीरें खुलने वाली हैं, और अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि अब हम आपको लेने वाले हैं, क्योंकि अंबिया को पहले ही सुझा दिया जाता है, तो वो अपने बच्चों से कहते हैं माजा ताबुदूना मिन बादी, तो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? आज का कोई बूढ़ा बाप होता कहता गद्दी पे कौन बैठेगा, कैश रजिस्टर किसके पास होगा, सौदा कौन खरीदेगा। जो चीजें जिंदगी में आपकी प्रायोरिटी होती है ना, वो ही आखिर में रहेंगी, पक्की बात है। धुने सुनने सुनाने वाले आखिरी वक्त में कहते मेरी धुने चला दो, खसने बोलने के नाम पे कुछ ना कुछ करने कराने वाले कहते हैं कि हमारे वो काम कर दो, जिनकी सारी जिंदगी अपनी और दूसरों की सलाह में लगेगी, उनको अपने दुनिया से जाते वक्त सबसे बड़ा गम क्या होगा कि हमें ये बता दो कि मरे बाद तुम इन चीजों का करोगे क्या। ये है धड़का कि जो काम सामने हो रहे हैं बाद में होंगे, जो कोशिशें आप हमारे सामने करते हैं कि हमारे बाद भी करते हैं, जो मोटिवेशन आपको सामने मिलता है वो बाद में भी रहता है। और अगर आज हम चले गए तो क्या वो अपने लिए कुछ बड़े फैसले कर लेंगे? याद रखिए कि जितना बड़ा ईमान उतने बड़े फैसले, जितना बड़ा ईमान उतनी बड़ी कोशिशें। ये ईमान तो मुझे एक पिल लग रही है, पिल्स, स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हो ना, तो ईमान की पिल खा के जाग जाओ। ये बीमार को बीमार नहीं रहने देता, ये सुस्त को सुस्त नहीं रहने देता। आपकी गवर्नमेंट सिर्फ एक ऐलान कर दे, सुबह 4 बजे घर से बाहर निकल कर चलने वाले को हर कदम पे 10-10 यूरो के नोट दिए जाएंगे। सिर्फ 10 की बात कर रही हूँ, जो मामूली बात है आपके लिए, 10 यूरो क्या होते हैं। लेकिन आपकी पेरिस की फ्रेंच हुकूमत एक अनाउंसमेंट कर दे कि सुबह 4 बजे घर से निकल कर 4:05 तक, सिर्फ सिर्फ 5 मिनट की ऑप्शन दे, जितने कदम निकलोगे घर से बाहर फलां तरफ तुम्हें 10-10 के नोट हर कदम पे दिए जाएंगे। सोते रहेंगे, बीमार हैं तो लेटे रहेंगे, और मसरूफ है तो काम करते रहेंगे, बर्तन धोते रहेंगे, वीडियो देख लूं, फिल्म देख लूं। आप कहेंगे जाए भाड़ में ये सब कुछ, और आप बल्कि घर में चल के ना चलने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि बोला 5 मिनट में मैं कितना चलती हूँ और मियाँ साहब कितना चलते हैं, फिर कदम छोटे लेंगे और तेज लेंगे। ये वॉक का असूल है, बड़ी बड़ी फरलाटे रखने वाले चंद मिनट में थक जाते हैं, कदम छोटे और स्पीड तेज, दैट इज द बेस्ट वॉक। ठीक मान, चलते जाइए चलते जाइए, कंटिन्यू रखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक दिन आपके स्टेप्स 10,000 से भी ऊपर हो जाएंगे। जो लोग वॉक करते हैं उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। आज आपके फोन्स ने वो गैजेट आपको दिए कि आपका एक एक कदम गिना जाता है। मैं आपको अभी अपना ही बताती हूँ, दो चार ही होने, घर से ही आए हैं अभी तो कहीं गए भी नहीं, अभी बताती हूँ कि मैंने सुबह से कितना वॉक किया। यानी आज की डेट में 263 स्टेप्स है, ये देखिए इसने मेरे ले लिए, सुबह से लेके अभी 10 बजे तक सिर्फ मैंने 263 स्टेप चले हैं। कितनी कैलोरियाँ बर्न होती हैं क्या, वो सब लिखा हुआ है, हिसाब किताब इसने लिख लिया। क्या आपके मेरे ईमान के कदम नहीं कोई गिन सकता? दैट इज, ये है जरूरत। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे कल एक मैसेज आया बड़ा फनी लगा, वो काफी परेशान सी कोई सिस्टर है बेचारी, नहीं है मैं तो जानती भी नहीं, खैर मैं जवाब दे देती हूँ, कहीं से उनको नंबर मिला, ये कर दिया वो कर दिया, ये हुआ वो हुआ। तो फिर एक दिन कहने लगी मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और अल्लाह मुझे तबाह होने से बचा ले, आई नीड मोटिवेशन, प्लीज सेंड मी मोटिवेशनल मैसेज ताज़ा, यानी मुझे कोई मोटिवेशनल मैसेज भेज दें तो मेरी मोटिवेशन ठीक होगी, इसकी ज़रूरत नहीं रहती। ईमान आपका बिग मोटिवेशन है। ये जैसे ये देखिए, ये इतनी तारें गैजेट जो लगे हैं ना, ये तार क्या है? मेरे फ़ोन की बैटरी इस वक्त 95% है, अगर ये तार मैंने अब उतार दिया आपको दिखाने के लिए, आप देखिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा 15 मिनट बाद, तो ये यकीनन 93 रह चुका होगा, क्योंकि इस पे बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त भी। और अगर मैं इसको इसमें लगा दूं, ये देखिए लगा दिया, अब ये दोबारा चार्ज हो रहा है। अब जब ये दोबारा ग्रीन पे आ गया ना, अब ये इस वक्त 95 है, मुझसे फिर 15 मिनट बाद पूछिएगा कि ये कितना है, ये शायद 96 हो चुका हो, कि यूजेज कम है और इसके पीछे से जो बिजली या वोल्टेज आ रहे हैं वो ज्यादा है, दैट इज ईमान। ये है स्टोरी। लोग आपके ऊपर नजरें लगाकर पूछेंगे आप इतना काम कैसे करते हैं, भाई बिजली इतनी है, ईमान की एनर्जी इतनी है, फुलां इतना काम कैसे कर लेते हैं, वो फुलां बाजी छुट्टी नहीं करती ना हमें करने देती, फुलां इतने काम करके भी वो क्लास में मौजूद होते हैं, हमसे तो अभी तक सुबह बच्चों का नाश्ता ही नहीं बना, और आप नाश्ते करा के मियाओं को भगाते हैं कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ईमान की एनर्जी है। आज छोड़ के बैठिए, देखिए आपसे ज्यादा सुस्त कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे जिंदगी के आखिरी दम तक ऐसे लोग देते रखना कि जो मुझे उठा के खड़ा करते। आप मुझे पूछे ना, मैं तो कभी उठू ही ना बिस्तर से, नमाज पढ़ के फिर सो जाऊं, और मुझे लग रहा है मेरे सोने के दिन आ रहे हैं। जितनी एनर्जी ट्रिप्स में, बाहर नए लोगों से मिलने में, नए नए प्लान्स, और ये जो फ्लायर्स, और जो मुझे पूरा एक कह लीजिए कि वो जायचा मिलता है जब मैं किसी मुल्क या शहर में जाती हूँ, यहाँ ये करना, वहां ये करना, इधर जाना, जिंदगी को जाया ना करें। आग लगा रहे हैं लोग, जब किसी को सिगरेट पीता देखते हैं ना आप, या कोई, या जिनको भी सिगरेट से बहुत ही बैर होगा ना, तो वो कहते हैं कि ये अपनी जिंदगी को आग लगा रहे हैं, लंग्स जल रहे हैं। वो लंग्स भी कहते होंगे कि ये अल्लाह तूने किस बंदे के अंदर हमें डाल दिया। लेकिन जो ईमान के बगैर जी रहे हैं, या जो अपने ईमान के सोर्स को मिटाए बैठे हैं ना, और अब ना दिन ब दिन नजर इतनी खुलती जाती है बंदे की कि दूसरों को अपने बारे में कुछ एहसास भी नहीं होता, और आप उनके बारे में कुढ़ते रहते हैं, कुढ़ते रहते, जलते रहते हैं। तो बात कर रहे थे हम कि ईमान से मुतल्लिक आयात, पूरा कुरान खोलें, और सिर्फ सूरत बकरा की मैं आपको जितनी भी अहम आयात है उसके अंदर ईमान है। बस आप देखिए आयतुल कुर्सी, आप खोल कर देख लीजिए, कुरान पूरे का पूरा आपको ईमान की दावतें दे रहा है। और जितना ज्यादा आप इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देते जाएंगे ना, आपको इसका यकीन आता जाएगा कि ये वो चीज है जिसके बगैर मैं जी नहीं सकती। चलिए लिखिए, आप में से कितनी देर सांस रोककर आप रह सकती हैं? जरा रुको, जब गिरने लगे तो ले लीजिएगा घड़ी, देखिए सब देखें घड़ी, आपके सामने ही होगी खुली भी, शुक्र है फोन के मैसेज भी नजर आ जाएंगे इसी बहाने, नोटिफिकेशंस, ये नोटिफिकेशंस है ही मान के, ये बंदे को भूलने नहीं देते कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है जिसको तुमने टाइम दिया हुआ है। ये अलार्म है, ये आपके रिमाइंडर्स हैं, ये आपका टाइम टेबल है, ये आपका अलार्म है। बंदा है मोमिन को अलार्म लगाना नहीं पड़ता, उसका अलार्म अंदर होता है। वो एक नौकर था ना, तो वो मालिक को देख रहा है, उसने 3-4 घड़ियां ली हैं, एक पे एक अलार्म लगा के इधर रख रहा है, दूसरा उधर, तीसरा उधर। तो वो कहता है साहब जी ये आप क्या कर रहे हो? कहने का अलार्म लगाने लगा हूं। तो कहा कि कहीं जाना है, तो कहने का साहब जी आपका क्या ख्याल है, आप इतने अलार्म लगा कर टाइम के पाबंद हो जाएंगे? तो उसने कहा क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कहने लगा इससे कुछ नहीं होना, इससे कुछ नहीं होना, ये तब होगा जब आपको यकीन होगा कि मैंने जाना है। और 5 वक्त की घड़ी का अलार्म नमाज का लगा लीजिए, आपके बाकी सारे टाइम सीधे हो जाएंगे। दैट इज ईमान। और मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं सारी आयतें बताऊं सूरह बकरा की कम से कम, लेकिन नहीं बता रही, इसलिए कि काम आपको खुद भी मिल जाएगा। आप एक्टिविटी कर लें, चले इस कोर्स के असाइनमेंट में डाल दीजिए कि आप कुरान की वो आयतें, चलें किसी एक सूरत की डाल दीजिए, ढूंढ ढूंढ कर आइए, देखिए कितनी कहाँ क्या है। लेकिन मैं आपको ये तादाद बता सकती हूँ कि सूरत बकरा में ही सिर्फ सिर्फ सूरत बकरा, उसमें लफ्ज ईमान किस रंग में कितनी दफा आया है, तो आप हैरान होंगे। आज आपको एक डिस्कवरी चैनल लगेगा ये टॉपिक, कि जिसने आपको सबसे अहम दौलत की चाबियां दे दी, ये कुंजियां हैं। और कोई भी बात हो, आ जाइए आयत 177, क्या नाम है उसका, आयते बिर लैसल बिर अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मगरिबी वलाकिन अल बिर मन आमन बिल्ला। देखिए टोटल आयतें कुरान पाक की 6200 कुछ हैं, मैंने आपको कितनी बताई, 879, तकरीबन 1/6 ऑफ कुरान। अगर आप कुरान को असॉर्ट आउट करें ना, 6 हिस्सों में बांटें, जब 6 हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्से में कितने पारे आएंगे बताइए ना, 30 में से निकालिए, 6 5 30, 5 5 30 पारों में से 5 पारे सिर्फ आयते ईमान की टॉपिक में, 1/6 ऑफ कुरान, ऑलमोस्ट 100% की जरूरत ही नहीं कहने की, ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ आयात आर अबाउट ईमान। अहम ही होगा ना, वो ताल्लुक बिल्ला की आयतें हों या वो कुछ भी हो, वो रोजे की आयत हो या अय्युल्लज़ीना आमनू, जितनी या अय्युल्लज़ीना आमनू है वो आयतें लिख लें। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह अपने और आपके कुर्ब की बातें करके कहते हैं वल युमिनू भी, तो मुझ पर ईमान लाया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, 208 है ग़ालिबन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला आपको मुझे ये सारी बातें बताकर क्या सिखा रहे हैं कि फिक्र करो इस दौलत की। बांझ तो नहीं हो, कंगले तो नहीं हो जाओगे, बैंकरप्सी ना हो जाए तुम्हारे ईमान की। अम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना, क्या हिसाब लगा लिया तुमने इस बात का कि तुम जन्नत में चले जाओगे? तुम्हारा ये गुमान हो गया, हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीना आमनु माहू, जो नबी के साथ थे ईमान वाले, वो कहते थे मता नसरुल्लाह, कब आएगी मदद अल्लाह की। 214 आयत है सूरह बकरा की, और इतनी छोटी सी आयत 218, इन अल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह। ईमान लाओ, फिर हिजरत करो, फिर जिहाद करो, फिर उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, वल्लाहु गफूर रहीम। हम इन तीन कामों से पहले ही उम्मीदें लगाकर बैठते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और शौहर बीवी का ताल्लुक, जिसके लिए इससे खूबसूरत कोई जुमला नहीं है कि निसाओकुम हर्सुल्लकुम फातु हर्सकुम अन्नशे तुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। ये कोई फनप्लेक्स नहीं, कोई गार्डन नहीं है तुम्हारा, ये खेती है। मेहनत करो, पानी दो, बीज डालो, फिर इसकी टेक केयर करो। उसमें भी अल्लाह ताला कहते हैं वबशिरिल मोमिनीन, बशारत दे दो ईमान वालों को। तलाक की आयतें कुरान में, अल्लाह अकबर कबीरा। आप जानते हैं तकरीबन 3 रुकू तलाक और उसके मुतल्लिकात के साथ है ना, उन आयतों में भी ईमान का तज़किरा, कि ईमान तो अल्लाह के साथ होता है। कहा अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक नहीं होगा ना, तो तुम्हारा बीवियों के साथ भी ठीक नहीं होगा, और शौहरों के साथ भी तुम्हारा ईमान ठीक नहीं होगा, इसलिए कि तुमने उसको खेल समझा। ईमान रिश्ते निभाता, ईमान जिम्मेदारियां अदा करवाता है, ईमान आपको सीधा रखता है, ये आपका स्टेयरिंग है, और आज के दौर में ये आपका नेविगेटर है। जितना ये आता जाएगा उतनी मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। और याद रखिएगा कि जिसको कहते हैं कि अहम तरीन आयतों में से एक आयत, के या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुन ला बय्युन फीही वला खुल्लतुन वला शफातुन वल काफिरुना हुमुज़ ज़ालिमून। ये 254 आयत है सूरत बकरा की। अल्लाह ताला इसमें भी ईमान की बातें करते हैं, और जिनको अंधेरों से निकालना होता है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह उनका दोस्त है, वली है उन लोगों का जो ईमान लाए, अल्लाह निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी में। ये है डिप्रेशन दूर करने का नुस्खा। और फिर उसके बाद जब आप सूरह बकरा के आखिरी हिस्से यानी तीसरे पारे के आखिरी हिस्से पे जाते हैं ना, तो उसमें तो नबियों के तस्करे, हजरत इब्राहिम के ईमान की बातें, हजरत उज़ैर की बातें कर करा के, और जहां आपको ले आता है कुरान सूद की आयतों पे, तो आयत 277, इन अल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहाती वाकामु सलाता वातु ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहते हैं ईमान और अमल साले की चेन चलती है, जिसका इजहार नमाज ज़कात की तरफ होता है तो जिंदगी बेखौफ होती है। आज भी नमाजी और रोजेदार की जिंदगी में सुकून होता है। और फिर 278 आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। दो दफा अल्लाह ने जिक्र कर दिया, छोड़ दो सूद। देखिए अगर इसका मैं ठेठ तर्जमा करूं ना, ऐ ईमान वालो डर जाओ अल्लाह से, और जो सूद में से बाकी रह गया उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान लाते हो। ये सूद की आयतों के साथ ही जुड़ी हुई आयत है, यानी सूद और ईमान साथ नहीं रह सकता, जैसे सूद और सुकून साथ नहीं रह सकता। लिख ले, जहां सूद होगा वहां सुकून रुखसत हो जाएगा, बीच में सिर्फ काफ डाल लीजिए, एक दो लफ्जों का ही फर्क है। सबसे लंबी आयत कुरान की, जिसको आयत दैन कहते हैं, या ये लजीना मनुजा तदायन तुम भी दैनिन इला अजले मुसम्मा, सूरत बकरा 282 है। सबसे लंबी आयत में भी ईमान का जिक्र है, और फिर सूरत बकरा की आखिरी आयतों में 285, आमन रसूल बिमा उन्जिल इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन। 3 दफा लफ्ज ईमान यूज हुआ इस एक आयत में, कि नबी दूसरों को दावत देता है तो खुद नहीं देता। 63 आयतें, 286 आयतों में से सूरत अल बकरा में ईमान से मुतल्लिकात। और कौन सी चीज हमें जतलाए। कहते हैं वो माँ दरा का, तुझे कौन बतलाए, तुझे कौन बताए कि ईमान कितनी कीमती चीज है। तू इस ईमान को हल्का समझता है, बेचता है सबसे पहले तो ईमान को बेचता है। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना बिल्लज़ी व खैर, आला छोड़कर अदना बेचते हो। कोई औरत है वो सोने की 2 चूड़ियां बेचकर पीतल की 100 चूड़ियां ले ले तो सर पीटेगा ना घर वाला। तू नकली को लेकर असली छोड़ रही है, चलो असली तो असली है, पड़ा भी रखोगे तो 2 साल बाद दुगना हो जाएगा, गम क्यों करते हो, तुम क्या रहते हो। और हम नकली ईमान लेकर फिरते हैं, हम कहते हैं अब ज्यादा जो है 100 वाला ईमान है, 2 वाला क्या करना है। असल कभी नहीं बदलती। आप देखिए अगर आप में से किसी की माँ के पास उसकी माँ की माँ के कंगन होते, पूछिएगा जरा अगर किसी की नानी या परदादी जिंदा है कि अम्मा जी सोना किस भाव था उस वक्त। हमारी नानी बताया करती थी शायद 54 का कुछ और 52 का कुछ, और उतना ही थोड़ा लेते थे लोग। आज मेरा हाल 1.25 लाख रुपया हो गया सोना, तो कोई कम हुआ। हाँ साथ गार्ड मैन भी एक रखना पड़ता है कि अगर सोना लेके जा रहे हैं तो, यानी सोना चांदी लोग ले जाएंगे, चोरी हो जाएगा, ईमान कोई नहीं लेगा। मुझे किसी सिस्टर ने सुनाया कि उनकी बेटी की शादी थी तो बैंक से जेवर लेकर आई, पाकिस्तान जा रही थी शादी के लिए, और घर में एक मुलाजिम जो बड़ा एतबार का था, ये थोड़ी देर कहीं गई है फ्लाइट से पहले, तो घर आई ना वो मुलाजिम और वो बक्से भर के यानी 200-300 तोले सोना था ले गया, गायब हो गया। तो वो सोने की दौलत थी तो ले गया ना, तो ईमान की दौलत होती तो वो लेके जाता। कभी सोचा आपने, सोना तो मट्टी है, दुनिया मट्टी है, जो मिल जाए तो मट्टी, ना मिले तो सोना है, ये दुनिया एक धोखा है। इस सोने को लेकर अपने ईमान को छोड़ने वालों जाके सो जाओ, इसलिए कि आज उम्मत मुस्लिमा कि पूरी जिंदगी जिस चीज में चली गई उसको हम नहीं पाते। और आप देखिए कि जो आमन रसूल वाली आयत है ना, पहले नबी ईमान लाया, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो चीज तुम्हें अपने लिए अच्छी लगती है वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी अच्छी रखे, ये मेयार है आपके लिए। ये नहीं हुआ कि दूसरों को दुहाइयां देते रहे नबी के ईमान लाओ ईमान लाओ, और अपने ईमान के वक्त आए तो कहा खबरदार मेरे से नहीं इसके तकाजे निपटे। दूसरों को आप दर्ज देते इन्फाक भी ले ला, इन्फाक भी ले ला, और आपकी बेगम ही जाकर कोई सदका करे तो आप कहते हैं तुम्हारे लिए थोड़ी दिया था ये दर्ज मैंने, सुना मैंने अपने मामला। ये ईमान नहीं होता, ये खोटा ईमान है।